नमस्कार भारत, 11 जुलाई दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फजल। कश्मीर में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों पर हमला, 7 की मौत।
सब फायरिंग कर रहे थे, बहुत बेरहमी से, शायद मेरे हिसाब से 10-12 तो थे, 5-6 दिखाई दिए आगे। बाद में तो मैंने ड्राइवर को बोला, पका पका भाई, तू गाड़ी पका, रोकना मत।
पूछेंगे बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी से कि अब उनका अगला कदम क्या होगा।
लालू यादव तो जब चारा घोटाले का आरोप लगा तो भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और कहते रहे कि मैं जेल में बैठकर सरकार चलाऊंगा। तब तो गेंद नीतीश कुमार के पाले में है और उनको तय करना है कि वो दागी मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में रखेंगे तो भ्रष्टाचार से समझौता करेंगे।
जिक्र होगा राफेल नडाल के विंबलडन से बाहर होने का भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। भारत प्रशासित कश्मीर के अनंतनाग जिले में कल रात अमरनाथ यात्रियों पर हुए चरमपंथी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों में 5 महिलाएं हैं। हमले में 19 यात्री घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अनंतनाग जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। चरमपंथियों का निशाना बनी बस में कुल 56 यात्री सवार थे, जिनमें से ज्यादातर यात्री गुजरात के थे, कुछ यात्री महाराष्ट्र के भी थे। बस में सवार यात्रियों ने बीबीसी को बताया कि वो अमरनाथ यात्रा से लौटकर वैष्णो देवी की तरफ जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की निंदा की है और कहा है कि ऐसे कायरतापूर्ण हमलों के जरिए भारत को झुकाया नहीं जा सकता है। हमले के बाद घायलों से मुलाकात करने अनंतनाग पहुंची जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये हमला करने वालों ने कश्मीर के नाम पर बड़ा धब्बा लगाया है, उन्हें सजा दिलाना सरकार का काम होगा। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने मूसल के इस्लामिक स्टेट के कब्जे से आज़ाद होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। मूसल को मुक्त करने के लिए करीब 9 महीने तक संघर्ष चला। अबादी ने इसे अंधेरे, अत्याचार और चरमपंथ पर जीत बताया है। इराक और सीरिया में अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन सेना के प्रमुख जनरल स्टीफन टाउनसेंड ने बीबीसी से कहा कि इस ऐतिहासिक जीत के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। इराक में अब भी इस्लामिक स्टेट के लड़ाके मौजूद हैं और सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि उनका दोबारा प्रभाव न बढ़े। उन्होंने कहा,
The government of Iraq didn't make the Sunni people feel as if their government represented their interests.
इराक की सरकार सुन्नी लोगों को ये भरोसा नहीं दिला पाती है कि वो उनके हितों का ख्याल करती है, इसलिए वो ISIS का मोहरा बन जाते हैं। इराक की सरकार को कुछ अलग करने की ज़रूरत है। उन्हें सुन्नी जनसमुदाय को भरोसा दिलाना होगा कि बगदाद की सरकार उनका प्रतिनिधित्व करती है। ये थे जनरल स्टीफन टाउनसेंड के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के वाइस चेयरमैन मार्क वार्नर ने कहा है कि वो चाहते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे उनके सामने इस बात की जानकारी दें कि बीते साल राष्ट्रपति चुनाव के दौरान रूसी वकील के साथ उनकी क्या बात हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने वकील के साथ अपनी मुलाकात का बचाव किया है। महिला वकील ने दावा किया था कि उनके पास ऐसी सामग्री है जो ट्रंप की प्रतिस्पर्धी हिलेरी क्लिंटन को नुकसान पहुंचा सकती है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि उस मुलाकात में कोई खास बात नहीं हुई थी। ट्रंप जूनियर ने कहा है कि उन्हें मामले की जाँच कर रही कमेटी के सामने बात रखकर खुशी होगी। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के दूत स्टीफान दे मिस्तूरा ने कहा है कि देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में संघर्ष विराम अब तक कामयाब रहा है। संघर्ष विराम रविवार से लागू है। मिस्तूरा जिनेवा में सीरिया शांति वार्ता का नया चरण शुरू होने के मौके पर बोल रहे थे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि रूस बातचीत की प्रगति के लिए अमरीका और बाकी अहम पक्षों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। उन्होंने कहा,
Замечу также, что и по политическому процессу в рамках вот Женевских.
मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक राजनीतिक प्रक्रिया की बात है, हम अपने अमरीकी सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। सीरिया में प्रभाव रखने वाले दूसरे पक्षों के साथ भी हमारा संपर्क है। हम इस आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ये भले ही कदम दर कदम हो, लेकिन ऐसा लगातार होगा। ये थे सरगेई लावरोव के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कोलंबिया के राष्ट्रपति ख्वान मैनुअल सांतोश फार्क विद्रोही समूह के 3,500 सदस्यों को समाधान देने के आदेश पर दस्तखत कर चुके हैं। इस समूह और सरकार के बीच बीते साल शांति समझौता हुआ था। राष्ट्रपति ने तीसरी और आखिरी बार समाधान के आदेश पर दस्तखत किए हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कल रात प्रतिबंधवादियों ने अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला कर दिया। इसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 32 अन्य लोग घायल हो गए। मरने वालों में 6 महिलाएं शामिल हैं। हमला रात करीब 8:20 पर हुआ। घायलों में से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें अनंतनाग और श्रीनगर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बस के मालिक हर्ष ने बीबीसी से बात करते हुए कहा,
वहाँ दर्शन करके वापस आ रहे थे, वैष्णो देवी जा रहे थे। हम काफले में ही थे पर हमारा पंचर गिरा था पीछे के टायर में, तो हम बनाने में थोड़े लेट हो गए। 20-25 मिनट हो गए हमको टायर चेंज करने में। टायर पंचर करीबन 5 बजे हुआ था। सब फायरिंग कर रहे थे, बहुत बेरहमी से। वो किसी को पत्थर मार रहे थे, किसी को गोली मार रहे थे। शायद मेरे हिसाब से 10-12 तो थे, 5-6 दिखाई दिए आगे। बाद में तो मैंने ड्राइवर को बोला, भगा भगा भाई तू गाड़ी भगा, रोकना मत।
ये थे बस के मालिक जो कि बीबीसी से बात कर रहे थे। देर रात मैंने घटना स्थल पर पहुंचे हुए बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद से संपर्क किया और पूछा कि वास्तव में हुआ क्या था।
देखिए, जो हमने बातें की यात्रियों से, वो अमरनाथ की यात्रा करके लौट रहे थे। ज्यादातर गुजरात के लोग थे और बस में 56 लोग सवार थे। और वो श्रीनगर में आज उन्होंने साइट सीइंग की, जो अच्छी जगह घूमे उन्होंने। उसके बाद वो बस से 5 बजे वहाँ से चले और रास्ते में उनके बस का टायर का पंक्चर भी हो गया, तो उसमें कुछ देर हो गई। तो उन्होंने कहा कि जो काफले में यात्री चलते हैं उससे थोड़ा सा वो पीछे रह गए। उसके बाद जब अनंतनाग से होकर गुजर रहे थे, उसके अचानक से बस पर हमला हुआ और 2-3 मिनट तक वो गोलियां चलती रहीं। लेकिन जो यात्रियों से मैंने बात की, उनका ये कहना था कि उन्होंने देखा नहीं कि कौन थे, सिर्फ जो बस का मालिक था उसको 5-6 लोग नजर आए जो बंदूकधारी थे। सामने ही से हमला कर रहे थे, कुछ साइड से हमला कर रहे थे। तो 2-3 मिनट में सारा कुछ खत्म हो गया। और कमाल की बात यह है, जितने यात्रियों ने मुझे बताया और जख्मी लोगों ने, कि बस का जो ड्राइवर था सलीम भाई, वो गाड़ी भगा के ले गया, बिल्कुल वो रुका नहीं। और 2 किलोमीटर जाकर उसने गाड़ी रोकी और फिर वो पुलिस आई, तब वो जख्मियों को ले जाया गया अस्पताल। तो इसकी बहादुरी की लोग तारीफ कर रहे थे।
आप अस्पताल गए, वहां पर क्या माहौल है अस्पताल? कितने लोग कुल मिलाकर मारे गए हैं और कितने जख्मी हैं?
देखिए, 7 लोगों की मारने की पुष्टि सबने कर दी है, खुद मुख्यमंत्री ने भी की है और उप मुख्यमंत्री से हमने जो बात की दोनों ने कर दी है। और 24 के करीब लोग घायल हुए हैं। 16 जो घायल थे वो हम उनसे मिले अस्पताल, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है अनंतनाग का, वहाँ हम गए थे। तो जख्मियों को जो चोटें आई थी, ज्यादातर उनमें से जो शीशे टूटे थे बस के उनसे आई है और कुछ को गोलियां भी लगी हैं। एक महिला से मैंने बात की,
मेरे सामने बैठी थी, कांच के पास बैठी थी, वो कांच का दरवाजा था ना, वहाँ बैठी थी, मैं बैठी थी और किसी बहन भी बैठी थी। उसको ही लगा, वो मर गई। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बाजू वाला का कुछ नहीं, पीछे वाला भी तुरंत मर गया, उसको भी लगा।
एक और यात्री से मैंने बात की तो उसने ये कहा,
वो इधर हो, श्रीनगर से आ गया था, वो रास्ते में से हो, मैं बैठा था ना, वो क्या क्या एक साइड से वो लगाया ना, एक ही साइड से लगा वो, हमें क्या क्या काट में ना धड़ाधड़ धड़ाधड़ आवाज आया ना, तभी एकदम हमें लग गया।
सुबह जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी वहाँ पहुंची हैं, उन्होंने क्या कहा?
मुख्यमंत्री जो पुलिस हेडक्वार्टर यहाँ पर, वहाँ पर आई तो लोगों ने उनको घेर लिया। जो यात्री जिंदा बच गए वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे, वो बहुत नाराज थे। तो मुख्यमंत्री ने बड़ी माजरत की और माफी मांगी कि इस तरह की घटना घटी है।
तमाम मुश्किलात के बावजूद ये लोग आते हैं और आज 7 लोग इसमें जान बहक हो गए। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा सानिया कोई हो नहीं सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं इसको कंडम करने के लिए और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के लोग जो भी इसमें मुलव्वस होंगे उनको जल्द से जल्द पकड़ के उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे और तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे।
इसको एक तरह से सिक्योरिटी लैप्स माना जा रहा है, किस वजह से ये संभव हो सका?
देखिए, यहाँ पे 7 और 8 तारीख को यात्रियों की जो यात्रा है रोक दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर हड़ताल बुलाई थी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने। बुरहान वानी जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है, उसकी बरसी थी, पहली बरसी, तो वो 8 तारीख को थी। तो 7 और 8 को यात्रा जहाँ जहाँ पे यात्री थे वहाँ रोक दी गई थी और कल ही 9 तारीख को ये यात्रा जो है वो खोली गई। और मैं खुद जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे मैंने چند گھنٹے پہلے اس حادثے کی ملاقات کی تھی, ان کا انٹرویو دیا تھا. وہ تو ایک طرح سے کہہ رہے تھے کہ دیکھیے کتنا اچھا انتظام ہے ہم نے یاتریوں کا کیا ہے, امرناتھ یاترا اچھے سے چل رہی ہے اور اس میں کوئی کہیں بھی گڑبڑی نہیں ہوئی ہے, اس دفعہ ہم لوگوں نے بہت اچھا سرکشا کا انتظام کیا ہے. اور اس جب ہم اپ مکھیہ منتری کے گھر سے, نرمل سنگھ جی کے گھر سے نکلے, اس کے تھوڑی دیر بعد ہمیں خبر ہوئی کہ اس طرح کی گھٹنا گھٹی ہے اننت ناگ میں. تو ایک سیکورٹی لیپس کی تو کوئی بات نہیں کر رہا ہے, لیکن شرمندگی ضرور ہو رہی ہے پرشاسن کو اور خود مکھیہ منتری نے اس کے بارے میں بتایا ہے.
ابھی تک کسی نے اس کی ذمہ داری لی ہے اس گھٹنا کی؟
دیکھیے لشکر طیبہ نے تو کہا ہے کہ ان کے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں اور کسی نے اب تک اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے. ہم عام لوگوں سے بھی بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی گھٹنا کشمیر میں نہیں ہوتی ہے, یہ بہت ہی درباگیہ کی بات ہے کہ اس طرح کی گھٹنا گھٹی ہے. بلکہ انہوں نے, ان کا یہ کہنا تھا کہ یاتریوں کو یہاں پہ عزت دی جاتی ہے, سری نگر میں جب آتے ہیں تو ان کی خاطر توازو کی جاتی ہے. تو یہ بہت ہی دکھت ایک گھٹنا گھٹی ہے جس کی ہر طرح سے نندا کرنی چاہیے.
یہ تھے اننت ناگ سے بی بی سی سنواد داتا زبیر احمد. اس حملے پر پورے بھارت سے پرتکریائیں آ رہی ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے واتسلیہ رائے. واتسلیہ بتائیے کن کن لوگوں نے ٹپنی کی ہے.
جی ریان صاحب, جیسا آپ جانتے ہیں اور اپنے شروتاؤں کو میں بتانا چاہوں گا کہ جب سے یہ حملہ ہوا اس کے بعد سے دلی میں کیندر سرکار اور جموں کشمیر میں راجیہ سرکار لگاتار سکریہ دکھائی دیں. پردھان منتری نریندر مودی کا حملے کے تھوڑی دیر بعد ہی ٹویٹر پر ایک بیان آیا جس میں انہوں نے حملے کی نندا کی, سمویدنائیں جتائیں مرنے والوں کے پریجن کے پرتی, گھائلوں کے لیے پرارتھنا کی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بھارت ایسے حملوں سے جھکے گا نہیں. اس کے بعد جانکاری سامنے آئی کہ راجناتھ سنگھ جو گرہ منتری ہیں بھارت کے, انہوں نے مکھیہ منتری محبوبہ مفتی سے بات کی, راجیہ پال این این بورا سے بات کی اور سچویشن کا جائزہ لیا. اس کے بعد تمام نیتا, چاہے وہ سونیا گاندھی ہوں, راہل گاندھی ہوں, کانگریس, بی جے پی, سبھی لوگوں نے گھٹنا کی نندا کی. اس بیچ میں این ایس اے جو اجیت ڈوال ہیں انہوں نے گرہ منترالے کے ادھیکاریوں کو ساتھ بلایا, ان کے ساتھ میٹنگ کی اور سچویشن کا پورا اسٹاک لیا. اس بیچ میں یہ جانکاری بھی آئی پرشاسن کی طرف سے, یہ بتایا گیا کہ جو امرناتھ یاترا ہے وہ رکے گی نہیں, جموں بیس کیمپ سے وہ یاترا جاری رہے گی, لیکن جموں بیس کیمپ پر سرکشا بڑھا دی گئی ہے اور پورا جو یاترا مارگ ہے اس میں جو سرکشا بلوں کی تعیناتی پہلے سے ہی تھی لیکن اس کو اور بڑھایا جا رہا ہے اور سرکار لگاتار سچویشن کی مانیٹرنگ کر رہی ہے.
بہت بہت دھنیواد آپ کا واتسلیہ رائے.
خبر سچ ہے اگر بی بی سی پر ہے.
اور اب ایک دوسرا وشے لیتے ہیں. بہار کے ستارڑھ راشٹریہ جنتا دل اور جنتا دل یونائٹیڈ گٹھ بندھن میں درار کو لے کر اٹکلیں تیز ہیں. بہار کے مکھیہ منتری نتیش کمار کی جنتا دل یونائٹیڈ کے ودھائکوں کی پٹنہ میں آج ہونے والی بیٹھک پر سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں. وہیں کل راجد نے صاف کر دیا کہ لالو پرساد یادو کے بیٹے اور اپ مکھیہ منتری تیجسوی یادو استعفیٰ نہیں دیں گے. پٹنہ سے نیرا سہائے کی رپورٹ.
پچھلے شکروار کو راشٹریہ جنتا دل پرمکھ لالو پرساد کے پریوار کے سدسیوں کے ہاں بے نامی سمپتی معاملے میں سی بی آئی کے چھاپے اور اسی معاملے میں اپ مکھیہ منتری تیجسوی پرساد یادو کا پراتھمکی میں نام آنے کے بعد راجیہ کے مکھیہ وپکشی دل بھارتیہ جنتا پارٹی لالو پرساد کے چھوٹے پتر اور اپ مکھیہ منتری تیجسوی پرساد یادو کے استعفے کی لگاتار مانگ کر رہا ہے. اس سے بہار میں مہا گٹھ بندھن سرکار تناؤ کی استھتی میں ہے. کانگریس لالو پرساد کے ساتھ کھڑی ہے تو جنتا دل یونائٹیڈ نے اپنا پکش اب تک سارجنک نہیں کیا ہے. جبکہ سوموار کو راجد ودھان منڈل دل کی بیٹھک میں یہ طے کیا گیا ہے کہ اپ مکھیہ منتری استعفیٰ نہیں دیں گے. راجد کے ورشٹھ نیتا اور وت منتری عبد الباری صدیقی نے سوموار کو اپ مکھیہ منتری تیجسوی پرساد یادو کو پارٹی کا سروانیہ نیتا بتایا اور اس پرکرن کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی سازش قرار دیا.
تیجسوی ہمارے ودھائک دل کے نیتا ہیں,
وہ مٹانے کا بہت بار کوشش کی گئی مگر ہماری ہستی مٹی نہیں بلکہ ہم راشٹریہ پریدرش میں ایک مضبوط طاقت کے روپ میں جانے جاتے ہیں.
راجد کے اس فیصلے سے مکھیہ منتری نتیش کمار پر دباؤ بڑھ گیا ہے کیونکہ نتیش کمار اپنی سوچھ چھوی کے لیے جانے جاتے ہیں. جانکاروں کے مطابق مکھیہ منتری نے پورو کے کاریکال کے دوران آروپ لگنے ماتر پر ہی تتکالین سرکار کے پانچ منتریوں کا استعفیٰ لے لیا تھا. بھاجپا کے ورشٹھ نیتا اور پورو اپ مکھیہ منتری سوشیل کمار مودی مکھیہ منتری نتیش کمار کو ان کے پرانے دنوں کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے کچھ پرانے پرشٹھ بھومی کی یاد دلاتے ہیں. ان کے انوسار
دل کروں گا کہ नीतीश जी को बताएं, दबाव बनाएं कि जनता क्या चाहती है बिहार की। ये केवल मंत्री बल्कि उप मुख्यमंत्री हैं जिनका ओहदा नंबर दो पर। और नीतीश जी, मैं आपको ये भी याद करा दूं कि जब गैसल में रेल दुर्घटना हुई थी उस समय आपने इस्तीफा दे दिया था रेल मंत्री की पद।
राज्य में उत्पन्न ऐसी विषम राजनीतिक परिस्थिति के बाद भी जनता दल यूनाइटेड की ओर से कोई बयान नहीं आ रहा है। सबकी नजर आज होने वाले जनता दल यूनाइटेड की बैठक और मुख्यमंत्री के फैसले पर है, जिससे बिहार में महागठबंधन सरकार का भविष्य तय होगा। नीरज सहाय, बीबीसी पटना।
हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी से संपर्क किया और पूछा कि राष्ट्रीय जनता दल पर उनका दबाव क्या काम नहीं आ रहा।
हम लोगों के लिए कोई अप्रत्याशित निर्णय नहीं था यह, क्योंकि लालू यादव तो जब चारा घोटाले का आरोप लगा तो भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और कहते रहे कि मैं जेल में बैठकर सरकार चलाऊंगा। तो राष्ट्रीय जनता दल से भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इस्तीफा देंगे। तब तो गेंद नीतीश कुमार के पाले में है और उनको तय करना है कि वो दागी मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में रखेंगे तो भ्रष्टाचार से समझौता करेंगे तो सुशासन की सरकार होगी या किस तरह की सरकार होगी, उनको तय करना है।
आपने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार को कोई खतरा नहीं होगा अगर वो इस गठबंधन से बाहर आते हैं।
देखिए, इन चीजों के बारे में केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा, भारतीय जनता पार्टी का किससे अलायंस करना नहीं करना। और अभी तो देखिए वो विषय नहीं है, अभी तो विषय है मंत्री को हटाना। और अगर मंत्री को हटाते तो राष्ट्रीय जनता दल समर्थन वापस कहाँ ले रहा है। और देखिए लालू यादव किसी भी हालत में समर्थन वापस नहीं लेंगे। ये गठबंधन को मैंडेट दिया जनता ने 5 साल के लिए, चलाए सरकार। लेकिन तेजस्वी यादव को हटाकर आप अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, ललित यादव, कोई और हो, अभी तो विषय एक व्यक्ति को हटाने का मामला है। ये सरकार गिरेगी रहेगी तो बाद का मामला क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लालू यादव किसी भी कीमत पर और समर्थन वापस लेंगे। वो अगर बर्खास्त भी कर दी जाएंगे तेजस्वी यादव तो भी वो झक मार कर सरकार का समर्थन करते रहेंगे।
लेकिन नीतीश कुमार भी चुप ही हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। और तो ये भी खबरें आई कि शरद यादव ने ये कहा कि गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है बिहार में।
देखिए, ये सब बोलने गई तो शरद यादव ही है जिन्होंने 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह से मिलकर ज्ञापन दिया था और सीबीआई ने जिस डिलाइट मार्केटिंग 3 एकड़ जमीन पर FIR दर्ज किया है, ये मामला तो सबसे पहले शरद यादव ने उठाया था। और शरद यादव ने प्रधानमंत्री से मिलकर 2008 अगस्त में और ज्ञापन दिया था और उसमें उल्लेख किया था कि लालू यादव पर कार्रवाई की जाए। तो अगर 2008 में शरद यादव जी ने जो मुद्दा उठाया, ज्ञापन दिया कार्रवाई करने के लिए, और आज अगर उस पर कार्रवाई हो रही है, इसमें बदले की भावना कहाँ है, अस्थिर करने की बात कहाँ है, आप जुड़े रहिए, कौन अस्थिर कर रहा है।
नीतीश कुमार और लालू यादव पहले साथ हुआ करते थे, फिर अलग हुए, फिर साथ हुए, अब ऐसा मोड़ आ गया है जहाँ पर नीतीश कुमार के पाले में गेंद है, जैसा कि आप कह रहे हैं। अब जो है जनता दल यूनाइटेड ने एक बैठक बुलाई और उम्मीद की जा रही है कि कोई फैसला आएगा, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर?
नहीं देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा, मैं इतना ही नीतीश जी को याद दिलाऊंगा कि श्री जीतन राम मांझी पर 9 साल भ्रष्टाचार से जुड़ा एक आरोप था, उसको मुद्दा बनाकर आपने शपथ ग्रहण के 4 घंटे के भीतर इस्तीफा ले लिया था। ये तो सबूत के साथ, प्रमाण के साथ, और आरोप लगे हैं, FIR दर्ज हुआ है, आपकी तलाशी हुई है, रेड हुआ आपके यहाँ, इससे ज्यादा बड़ा गंभीर अपराध क्या हो सकता है। इसलिए गेंद उनके पाले में, उनको निर्णय लेना है। आपने NDA के साथ रहते हुए 5-5 मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया था और आज एक मंत्री के इस्तीफे के सवाल पर तो आपको ये निर्णय करना है, अगर वो इस्तीफा नहीं दे तो बर्खास्त कीजिए आप।
बिहार भारतीय जनता पार्टी नेता सुशील मोदी से बात कर रही थी हरिता कांडपाल।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, BBC हिंदी।
ये BBC है, आप नमस्कार भारत सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। आइए देखते हैं भारतीय समाचार पत्रों में किन खबरों को प्रमुखता दी गई है। वात्सल्य राय सारे अखबारों पर नजर डाल चुके हैं, बताइए क्या कहते हैं।
जी रेहान साहब, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के मैंने जो अखबार देखे हैं, जो दो बड़ी खबरें जिन पर आपने बात की, अमरनाथ से लौटते हुए यात्रियों पर जो हमला हुआ है और दूसरा बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की जो कल बैठक हुई थी, इन दो खबरों को सारे अखबारों ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर जगह दी है। और अमरनाथ यात्रियों पर जो हमला हुआ है, ज़्यादातर अखबारों ने उस खबर को ही लीड खबर बनाया है। इसके अलावा कश्मीर से एक और खबर आई थी जो कल पूरे दिन छाई रही थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने UP के मुजफ्फरनगर के रहने वाले संदीप कुमार उर्फ आदिल को गिरफ्तार किया है, जिसे अखबारों ने दिया है हेडलाइन इसके लिए दिया है, लश्कर का हिंदू आतंकी अरेस्ट। इस खबर को भी ज्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। चीन की खबर भी है, अखबारों ने बताया है कि कल जानकारी ये आई थी डोकलाम ने भारतीय सेना ने अपने तंबू लगा लिए हैं, आज जानकारी आई है कि चीन ने भी अपने तंबू तान लिए हैं। और इसी के साथ दिलचस्प जानकारी ये दी गई है कि राहुल गांधी ने चीनी राजदूत से मुलाकात की थी, इसको लेकर एक विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस ने पहले कहा कि राहुल गांधी नहीं मिले,
फिर
बाद में कहा कि उनकी मुलाकात हुई। इस खबर को भी सारे अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है। एक अखबार में जो खबर इम्पॉर्टेंट है पंजाब के लोगों के लिए खास तौर पर, कि मूसल इराक का जो शहर है जिसको आज़ाद कराया गया, वहाँ 29 भारतीय बंधक हैं साल 2014 से। इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बात की भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से, जिन्होंने कहा कि उनको छुड़ाने के लिए और वापस लाने के लिए हर कोशिश की जा रही है। स्टेट्समैन अखबार ने इस खबर को दिया। इसके साथ बिहार की हमने बात की राजनीति की, अखबारों में एक खबर आई है खासतौर पर इंडियन एक्सप्रेस ने, वहाँ जो एम्स बनाया गया है जो 4 साल पहले ऑपरेशनल हुआ था उसकी स्थिति बताई है कि बड़ी ख़राब है, वहाँ ना ओपीडी चालू है ना दिल के मरीजों के लिए कोई व्यवस्था है, कोई सुविधा नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक खबर में जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने IIT NIT और दूसरे तमाम कॉलेजों के दाखिले पर जो शुक्रवार को रोक लगाई थी उसे हटा लिया है। भारतीय टीम के कोच का सिलेक्शन कल नहीं हो सका और सौरभ गांगुली जो उस कमेटी में है जो जिन्हें कोच चुनना है, उन्होंने एक बयान दिया, दिलचस्प बयान है कि कप्तान को पता होना चाहिए कि कोच कैसे काम करते हैं। इस खबर को भी ज्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। एक महत्वपूर्ण खबर और है जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है कि एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के इकोनॉमिक दर्जे में नॉनवेज खाना परोसना बंद कर दिया है और वजह है खर्चा घटाना।
बहुत बहुत धन्यवाद वात्सल्य राय आपका। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का पहला बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, क्या मुद्दे छाए रहेंगे और कितना मुश्किल होगा पहला विधानसभा सत्र योगी सरकार के लिए, सुनिए समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
विधानसभा में भारी बहुमत के बीच बीजेपी सरकार भले ही अपना पहला बजट पेश करने जा रही हो, लेकिन उसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। केंद्र की मनाही के बावजूद किसानों की कर्ज माफी के लिए धन उपलब्ध कराना तो बड़ी चुनौती है ही, गन्ना किसानों का भुगतान और कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन जुटाना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। ये बजट न सिर्फ नई सरकार का पहला बजट है बल्कि वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल भी पहली बार बजट पेश करने जा रहे हैं। BBC से बातचीत में उन्होंने कहा,
जिंदगी में हर काम एक चुनौती है, चैलेंजेस होते हैं तभी रास्ता बहुत अच्छा बनता है। यहाँ तक इस प्रथम बजट का प्रश्न है, ये प्रथम बजट एक बहुत वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए अवसर मिला, जनता ने मैंडेट दिया, क्लियर मैंडेट दिया। मैंने प्रार्थना की है कि मेरा पहला बजट जनता के लिए समर्पित हो, जिसको भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारी आशाएं हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम, हमने बहुत ईमानदारी के साथ अपनी विश्वसनीयता को कहीं आज ना आए हम लोगों ने इसका उसको करने की बात की है।
31 जुलाई तक की अवधि के लिए पिछली सरकार ने दिसंबर महीने में लेखानुदान पेश किया था। आज दोपहर बाद बजट पेश किया जाएगा और फिर उस पर दोनों सदनों में चर्चा होगी। वहीं विपक्षी दलों की नजरें बजट पर कम, दूसरे मुद्दों पर ज्यादा हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता द्विजेंद्र त्रिपाठी कहते हैं कि सत्र के दौरान उनकी पार्टी कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर सरकार से सवाल करेगी।
कोई भी एजेंडा कांग्रेस का व्यक्तिगत नहीं है, एजेंडा जो है किसानों का है जो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, उन किसानों का है जिनके गन्ने का भुगतान नहीं किया गया, कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है। रायबरेली में 5-5 लोगों की जघन्य हत्या की गई और आज बीजेपी उस पर भी राजनीतिक रूप से देख रही है और वोट की राजनीति कर रही है। इतना करीब होने के बावजूद भी ना तो बीजेपी की तरफ से आज तक इस जघन्य कांड की निंदा की गई और ना ही मुख्यमंत्री ने वहां पर जाना मुनासिब समझा।
कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मई महीने में मौजूदा विधानसभा के 5 दिवसीय पहले सत्र के दौरान भी सदन में काफी गहमागहमी हुई थी। सरकार ने अब 3 महीने का कार्यकाल जरूर पूरा कर लिया है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर वो अभी भी विपक्ष के निशाने पर है। वहीं समाजवादी पार्टी को इस बात से भी शिकायत है कि योगी सरकार पिछली सरकार की ओर से शुरू की गई तमाम योजनाओं को बंद कर रही है। पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि सरकार इन योजनाओं को बंद करके उसी पैसे से किसानों के कर्ज माफ करने के लिए धन जुटाना चाहती है।
जनता की जो जनहित में जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी अखिलेश यादव जी ने, उनको वो रोक करके उस काम में लगे हुए हैं, उसमें से कुछ पैसा जुटाने की कोशिश उनकी है, लेकिन इससे किसानों की जो अस्थाई समस्या है उसका कोई समाधान होने वाला नहीं है। तो हालत ठीक नहीं है, सारे मुद्दे रहेंगे, लेकिन विशेष तौर पर कानून व्यवस्था का रहेगा, महिलाओं का उत्पीड़न का रहेगा, बिजली का संकट का है, किसानों का है, ये सारे मुद्दे भी रहेंगे। व्यापारी अलग से दिक्कत में फंसे हुए हैं GST को लेकर के, तो ये समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है, इसे सदन के अंदर भी उसका निर्वहन करेंगे।
बहरहाल सरकार बजट आज पेश कर देगी और सदन इसे मंजूरी भी दे देगा, लेकिन जानकारों का कहना है कि कम संख्या के बावजूद विपक्ष ने जिस तरह से पिछले सत्र में सरकार की किरकिरी की थी और इस बार भी जो मुद्दे उसके एजेंडे में हैं, देखने वाली बात यह होगी कि सरकार उनका सामना किस तरह से करती है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
कल विंबलडन के 7वें दिन स्पेन के राफेल नडाल और महिला युवा वर्ग में भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार बेल्जियम की क्रिस्टिन फ्लिपकेंस की चुनौती समाप्त हो गई। इतना ही नहीं, महिला एकल में शीर्ष वरीयता हासिल जर्मनी की एंजेला कर्बर का अभियान भी थम गया। कैसे हुआ ये सब, एक रिपोर्ट के साथ विंबलडन से हमारे साथी पवन सिंह अतुल।
विंबलडन से BBC हिंदी की विशेष प्रस्तुति के साथ मैं हूं पवन सिंह अतुल। इस साल के टूर्नामेंट का शायद सबसे रोमांचक मैच कल विंबलडन के कोर्ट नंबर 1 पर खेला गया। राफेल नडाल और जील मुलर ने 2-2 सेट जीतने के बाद 5वें और निर्णायक सेट में अपनी जान झोंक दी। पहले दो सेट मुलर ने 6-3, 6-4 से जीते और अगले दो नडाल ने 6-3, 6-4 से। फिर शुरू हुआ 5वां सेट जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और आखिर में जील मुलर ने 5वां सेट जीतकर मैच अपने नाम किया। आखिरी सेट मुलर ने 15-13 से जीता। उधर डिफेंडिंग चैंपियन एंडी मरे लगातार 10वीं बार विंबलडन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त मरे ने फ्रांस के बेनुआ पेयर को 7-6, 6-4, 6-4 से हराया। मैच के बाद मरे ने कहा,
I thought I played well today. You know, maybe a couple of sloppy service games in the first set, but that was by far the best I'd hit the ball so far in the tournament. So
मेरे ख्याल से मैं आज अच्छा खेला। पहले सेट में भले ही एक आध सर्विस ढीली रही हो, लेकिन बाकी मैच बढ़िया रहा। मैं इस नतीजे से बेहद खुश हूँ। एंडी मरे के शब्द। उधर महिला सिंगल्स मुकाबलों में ब्रिटेन की योहाना कोंटा भी अंतिम 8 में पहुंच गई हैं। कोंटा ने फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया को 7-6, 4-6, 6-4 से हराया। रोजर फेडरर ने भी गिगोर ड्रिमिट्रोव को हराकर अपना विंबलडन अभियान जारी रखा है। 8वां खिताब जीतने की कोशिश कर रहे फेडरर ने ड्रिमिट्रोव को 6-4, 6-2, 6-4 से हराया। 5 बार विंबलडन में महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली वीनस विलियम्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। वीनस विलियम्स ने क्रोएशिया की एना कोंजु को 6-3, 6-2 से हराया। अंतिम बार 2008 में विंबलडन खिताब जीतने वाली वीनस अब आखिरी 8 में येलेना ओस्टापेंको से खेलेंगी। महिलाओं में कल वर्ल्ड नंबर 1 जर्मनी की एंजेलिक केर्बर स्पेन की गार्बिन मुगुरुथा से हार गई हैं। मुगुरुथा ने ये मैच 4-6, 6-4, 6-4 से जीता। क्वार्टर फाइनल में वो स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा से भिड़ेंगी। महिलाओं का 4वां क्वार्टर फाइनल मागदा रिबारिकोवा और कोको वंडावे के बीच होगा। विंबलडन में भारत के लिए दिन अच्छा नहीं रहा। मिक्स डबल मुकाबलों में जापान की एरी होजुमी और भारत के पूर्व राजा की जोड़ी हार गई है। उन्हें कनाडा के डेनियल नेस्टर और अंद्रेजा क्लेपाज की जोड़ी ने 6-2, 7-5 से हराया। भारत की सानिया मिर्जा और क्रिस्टिन फ्लिपकेंस की जोड़ी भी महिला युगल मुकाबलों से बाहर हो गई है। उन्हें ताइवान की युंगजान चेन और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने हराया। युंगजान और हिंगिस ने ये मैच 6-2, 6-3 से जीता। पवन सिंह अतुल, BBC विंबलडन।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर के अनंतनाग जिले में कल रात अमरनाथ यात्रियों पर हुए चरमपंथी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की निंदा की है। वहीं जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हमला करने वालों को सजा दिलाना सरकार का काम होगा। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने मूसल के इस्लामिक स्टेट के कब्जे से आज़ाद होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। अमरीकी सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के वाइस चेयरमैन मार्क वार्नर ने कहा है कि वो चाहते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे उनके सामने इस बात की जानकारी दें कि बीते साल राष्ट्रपति चुनाव के दौरान रूसी वकील के साथ उनकी क्या बातचीत हुई थी। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के दूत इस्तीफान दे मिस्तूरा ने कहा है कि देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में संघर्ष विराम अब तक कामयाब रहा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ख्वान मैन्युअल सैंटोस ने फार्क विद्रोही समूह के 3,500 सदस्यों को क्षमादान देने के आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।